आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में और 95 सदस्यों ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ ही वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवा और तलाकशुदा औरतों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाना भी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है।
भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने से वक्फ संपत्तियां अवैध कब्जे से मुक्त होंगी और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। वक्फ संशोधन बिल पारित होने और जुमे की नमाज को देखते हुए आज प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। अयोध्या जिले में टाट शाह मस्जिद में व्यापक सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई। जौनपुर जिले में ड्रोन कैमरे की मदद से स्थिति पर नजर रखी गई। वाराणसी जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च कर जनता के बीच सुरक्षा का संदेश दिया गया। श्रावस्ती जिले में भारत नेपाल सीमा पर विशेष सतर्कता रखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के महत्वाकांक्षी अनंत नगर आवासीय योजना के पंजीकरण की शुरुआत की। मोहन रोड पर 785 एकड़ में फैली इस योजना की लागत करीब 6,500 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने योजना के लाभ के बारे में जानकारी दी और कहा कि सस्ती आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना आज की आवश्यकता है।
1.5 लाख लोगों को आवासीय सुविधा इसमें मिलेगी, जिसमें 10,000 फ्लैट का निर्माण 60 प्लॉट्स में करने का प्रावधान किया गया है। EWS LIG श्रेणी के 5,000 भवनों में 25,000 से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा का प्रावधान किया गया है।
रामनवमी के दिन अयोध्या धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर रामपथ पर ड्रोन के जरिए सरयू नदी के जल के फुहारे डाले जाएंगे। ये जानकारी अयोध्या के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने आज श्री राम जन्मोत्सव का पोस्टर रिलीज करने के बाद मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। नवरात्र में आज माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर वाराणसी स्थित माँ कालिका गली में पूरे दिन माँ कालरात्रि देवी के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिनेता और निर्देशक पद्मश्री मनोज कुमार के निधन पर शोक जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोज कुमार का निधन कला एवं फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। फिल्म अभिनेता का आज सुबह 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। मनोज कुमार ने भारतीय दर्शकों को कई यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, शोर तथा पूरब और पश्चिम प्रमुख हैं। आईपीएल 2025 के 16वें मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की टीम के बीच मैच खेला जाएगा। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं हल्की वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग द्वारा जारी दैनिक मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार इस अंचल में कुछ स्थानों पर आज वज्रपात भी हो सकता है। साथ ही आने वाले 2 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की गई है। समाचार समाप्त हुए, नमस्कार।